कहानी नंबर 5, पेज 49। वो मुझे रोशनी दे गई, सुर्ख बत्ती जल उठी, पूरी सड़क दूर तक गाड़ियों से अट गई। इधर वादे में भी चंद मिनट बाकी रह गए। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सोचने लगा। गुस्से और परेशानी से मेरा बुरा हाल था। खाने खराब हो इस सुर्ख इशारे का खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। काश मैं सबसे आगे होता तो इशारे को आनन फानन क्रॉस कर जाता। घड़ी खतरे की घंटी बजा रही थी। खुदा खुदा करके सब्ज इशारे की बत्ती रोशन हुई। मैंने अपनी उंगली हॉर्न के बटन पर रख दी। मेरी इस हरकत ने सब लोगों को परेशान कर दिया। रुकी हुई गाड़ियां हरकत में आईं। मैं एक एक करके तेज़ी से इन्हें क्रॉस करने लगा। मेरी खतरनाक ड्राइविंग ने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान कर दिया। करीब था कि मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती। मेरी कोशिश थी कि एकदम मुड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। वक्त गुजर गया, मेरे दोस्त जा चुके थे। मैं सोचने लगा मैं कहाँ जाऊं। मैंने लंबी आह भरी। काश मुझे इनके ठिकाने का इल्म होता। ये कौन शख्स है जिसको दोस्तों के साथ किसी ऐसी महफिल में जाना है जहाँ ये अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा कर सके। रास्ते में फंस गया, ट्रैफिक के इशारों में रहा और ये वहाँ नहीं जा सका और इसके बाकी दोस्त चले गए। अब मेरी गाड़ी बड़े सुकून से जा रही थी। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था कि दूसरी गाड़ी का हॉर्न मुझे मेरी सोचों के गर्दाब से बाहर खींच लाया। मैंने इस गाड़ी वाले को बड़े गुस्से से देखा और अपने हाथ के इशारे से कहा, आराम से चलो, तुम जितना चाहो जोर लगा लो, परवास नहीं कर सकते। मैं अपनी चंद मिनट पहले वाली हालत भूल गया। मैंने दिल में ठान ली कि आज का रथ जगा घर ही गुजरेगा। हाँ, ये बहुत उम्दा तजवीज़ है। मेरी अकलौती बेटी बीमार है, मुझे इसके पास रहना चाहिए। मैंने वापसी की राह पकड़ी और अपनी गाड़ी एक वीडियो सेंटर के सामने रोकी। बहुत सी फिल्में खरीदी और घर की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुआ और अपनी बीवी से कहा, जल्दी से चाय और बिस्किट लाओ। वो मुझे नसीहत करने लगी, अहमद अल्लाह से डर जाओ। मैंने इसकी नसीहत एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। टेलीविज़न का रिमोट का पकड़ा और वीडियो फिल्म चला दी। मौसीकी के शोर से सारा घर गूंज उठा। इस नेक बख्त ने सर झुका लिया और हसरत अफसोस से अपना दामन मसल कर कहने लगी, अहमद अल्लाह से डर जा। फिर वो कमरे से निकल भागी। वो मौसीकी से बहुत बेजार थी। कमरे में कुछ और धुनों का शोर उठा। मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था और बिस्किट भी खाता जा रहा था। आँखें टेलीविज़न पर जमी हुई थीं। फिल्म का पहला हिस्सा ख़त्म हो गया, फिर दूसरा भी मुकम्मल हो गया। इधर घड़ी रात के 3 बजा रही थी। अचानक दरवाजे का हैंडल घूमा। मैं चीखा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मेरा सवाल रद्द अमल से खाली रहा। कोई जवाब न मिला और दरवाज़ा खुल गया। मेरी बीमार बेटी कमरे में दाखिल हुई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल बेहिसो हरकत खामोश रहा, कोई बात नहीं की। बेटी मेरे करीब खिसक आई, मुझे बड़ी संजीदगी से देखा, फिर कहने लगी, प्यारे अब्बा जान, अल्लाह का खौफ कीजिए, अल्लाह से डर जाइए। इतना कहा डोलते कांपते कदमों से वापस चली गई। मैंने बहुत सी आवाज़ें दीं, सारा सारा, मेरी हर पुकार खाली लौट आई। इसने कोई जवाब ना दिया। मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये मेरी बेटी है? मैं उठा और इसके कमरे में गया और वो अपने बिस्तर पर अपनी माँ की गोद में सर रखे सो रही थी। हाँ हाँ, ये वही है। मैं अपनी बैठक में वापस आ गया और टेलीविज़न बंद कर दिया। अचानक यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा कमरा कमरा नहीं, कोई गुंबद है जो मेरी लखते जिगर की सदाओं से गूंज रहा है, अब प्यारे अब्बा जान, अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह से डर जाइए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बदन से पसीना फूट पड़ा। पता नहीं घड़ी भर में मुझे क्या हो गया। बस इतनी खबर थी कि मेरे कान अपनी लाडली की सदाओं से भर गए हैं, अब्बा जान अल्लाह से खौफ खाइए, अब्बा जान अल्लाह से डरिए। इसका मासूम चेहरा मेरी निगाहों पर छा गया और इसके इंतबाही बोल मेरे सीने में पेवस होते गए। इंतबाही बोल यानी दिल पर असर करने वाले, डराने वाले, खबरदार करने वाली बातें। न जाने कितनी मुद्दत बीत गई कि मैं नमाज के करीब भी नहीं फटका था। आह, मैं अपने परवरदिगार से बेवफाई कर रहा था। मेरे शामो सहर अपने रब की हुक्म अदूली से आलूदा हो चुके थे, यानी मुझे नाफरमानियों की आदत हो चुकी थी। मैंने जामे गफलत पी लिया था। मेरी जवानी का खैमा रंग बिरंगी फिल्मों और सिगरेट के धुएं से भर गया था। आह, मैं कितना नाबकार था। मैंने अपने बहुत प्यारे, बड़े मेहरबान और बड़ी शफकत फरमाने वाले रब की चौखट छोड़ दी थी। जूं ही मैं इसकी बारगाह से दूर हुआ, मुझ पर शैतान झपट पड़ा। फिर कौन सा गुनाह था जो मैंने ना किया हो, कौन सी गंदगी थी जो मुझे ना चिमटी हो। मगर अब आन की आन में ये क्या हो गया, मेरी बेटी की सदाओं के काफले मुझे जगा गए। मेरी गफलत की अंगड़ाइयाँ मादूम हो गईं। अब यकायक मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं बेदम होकर ज़मीन पर गिर गया। सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद अबाबील की तरह उड़ गई। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। माजी के काले करतूत मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगे। हर बुरे काम पर मेरी बेटी की आवाज़ मुझे चौंका रही थी। अब्बा जान, अल्लाह से डर जाइए, अब्बा जान, अल्लाह से डर जाइए। इसी दौरान अचानक अजान की बाबरकत आवाज़ गूंजने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सामने दूर तक नूर की चादर फैलती चली जा रही है। मुझे झुरझुरी आ गई, दिमाग झुंझुना उठा, बदन कांपने लगा। मुअज्जिन कह रहा था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। दिल ने गवाही दी कि मुअज्जिन जो कुछ कह रहा है वही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। मुझे नदामत हुई, किस कदर अफसोस है, मैं सारी उम्र सोया ही रहा। इस एहसास ने दिलो दिमाग की दुनिया तहोबाला कर दी। मैं फौरन उठा, वुजू किया और मैं मस्जिद के रास्ते पर अजनबी की तरह चल दिया। बादे सबा मुझे डांट रही थी, ओ भटके हुए राही, इतनी देर कहाँ रहा। आसमान के परिंदे मीठे मीठे बोल बोल रहे थे, जैसे कह रहे हों खुश आमदेद। आखिरकार तू जाग उठा। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, दो रकतें पढ़ी, कुरान करीम की तिलावत करने लगा। मैं कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते अटक रहा था क्योंकि तवील मुद्दत बीत गई थी, मैंने कुरान नहीं खोला था। मैंने महसूस किया जैसे कुरान मुझसे गिला कर रहा है, तुमने बरसों मुझे छोड़े रखा, आखिर क्यों, क्या मैं तुम्हारे रब का कलाम नहीं हूँ। मैंने सूरत जुमर की आयत बार बार पढ़ी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीया इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ फरमा देता है, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। मैं हैरान रह गया, अल्लाह अल्लाह, सारे गुनाहों की यक कलम माफ़ी का ऐलान। हमारा मुकद्दस और महबूद अल्लाह हम पर कितना मेहरबान है, किस कदर रहम फरमाने वाला है। जी चाहता था मुसलसल कुरान पढ़ता रहूं, लेकिन मुअज्जिन ने तकबीर कह दी। मैं लम्हा भर के लिए अपनी जगह खड़ा रहा, फिर लोगों के साथ आगे बढ़ा, सफ में खड़ा हो गया। मैं अपने आप को अजनबी महसूस कर रहा था। मैंने नमाज मुकम्मल की और सूरज तुलू होने तक मस्जिद में बैठा रहा, फिर घर लौटा, कमरे का दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी बीवी और अपनी बेटी सारा को देखा, वो दोनों सोई हुई थी। मैं खामोशी से पलट आया और अपने काम के लिए निकल आया। जब दिल बदलता है तो ऐसे ही होता है, हुँ? एक अच्छी चीज़ आती है तो दूसरी भी आने लगती है। सुबह सुबह काम पर जाना मेरी आदत न थी। मुझे सुबह सुबह बेदार देखकर मेरे साथी हैरान हो गए। मुझ पर तंजिया मुबारकबाद की बुछाड़ होने लगी। मैंने कोई परवाह न की, मेरी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थीं। मैं इब्राहिम का इंतजार कर रहा था, वो ऑफिस में मेरा साथी था और हमेशा मुझे नसीहत करता रहता था। वो बड़ी बसीरत और आला अखलाक का मालिक था, मामलात में बड़ा खरा और साफ गोता। इब्राहिम आ गया, मैं अपनी जगह से उठा, इसके इस्तकबाल किया। इसकी आंखें हैरान थीं। इसने मुझसे पूछा, अहमद तुम? मैंने जवाब दिया हाँ। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, बहुत अच्छा, हम दफ्तर ही में बात कर लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, रेस्टोरेंट में चलते हैं। इब्राहिम खामोश हो गया और अपने कान मेरी तरफ लगा दिए। मैंने इसे गुज़श्ता रात का सारा वाक्या सुनाया। पहले तो इसने मुझे हैरत से देखा, फिर इसकी आंखों में आंसू चमक उठे, वो खुशी से झूम उठा, फिर बड़ी लजाजत से बोला, मेरे अजीज़ भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर मेहरबान हो गया। इसने अपनी करम फरमाई से तुम्हारे दिल में हिदायत का चिराग रोशन कर दिया। इसकी हिफाजत करना, इसे गुनाहों की आंधी से बुझा ना देना। मेरा वो दिन बड़ा हशाश बशाश गुजरा, पूरी रात सो नहीं सका था। इसके बावजूद बहुत आसूदा और मुतमाइन था, पूरे इन्हेमाक से अपने काम में मसरूफ था। मेरे साथी मुझसे मदद मांग रहे थे। एक ने कहा, आज बड़े चुस्त हो, क्या बात है? मैंने जवाब दिया, ये मस्जिद में फजर की नमाज बाद जमात अदा करने की बरकत है। बेचारा इब्राहिम काम करके थक जाता था और मैं सोया रहता था। इसने कभी मुझसे नागवारी का इजहार नहीं किया था। हाँ, ये ईमान था, जब ईमान दिल के रेशे रेशे में समा जाता है तो इसी तरह समरातो बरकात लाता है। वक्त गुजरता गया, मुझे किसी परेशानी और थकावट का एहसास तक ना हुआ। इब्राहिम ने कहा, अहमद तुम घर चले जाओ, तुम रात से सोए नहीं, तुम्हारी जगह मैं काम करता हूँ। मैंने घड़ी देखी, जोहर की नमाज में थोड़ी देर रह गई थी। मैं काम करता रहा, फिर मौज़िन ने अज़ान दी। मैं फौरन मस्जिद चला गया और पहली सफ में बैठ गया। मैं बीते हुए दिनों पर कफ़े अफसोस मल रहा था और बेहद शर्मिंदा था कि नमाज के वक्त में काम से भाग जाता और बाजारों में आवारा घूमता था। मगर अब मेरी कैफियत ये हो गई, बेगम इश्के तो सद खैफ उम्रे के गज़श्त, काश अजीम पेशे गिरफ्तार गमत ख्वाहम बूत। फारसी का शेर है, मतलब क्या इसका? तेरी उल्फत के बगैर जो जिंदगी बसर हुई, मुझे इस पर बेहद अफसोस है। काश मैं तेरी मोहब्बत में बहुत पहले गिरफ्तार हो जाता। किसको कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हान तआला को। नमाज पढ़कर मैं घर की तरफ चल दिया। रास्ते में सारा की याद ने बेचैन कर दिया। सारा का क्या हाल होगा? मैं अपने सीने में घुटन सी महसूस कर रहा था, मालूम नहीं क्यों। मैंने सर आसमान की तरफ उठाया और दुआ की, ए अल्लाह मेरी बेटी को जल्दी शिफा अता फरमा। घर पहुंचा, दरवाज़ा खोला, बीवी को आवाज़ दी, कोई जवाब न मिला। जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुआ, मेरी बीवी आहें भर भर कर रो रही थी। इसने मेरी तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाई, सारा दागे जुदाई दे गई, आह मेरी बच्ची मर गई, अपने खाले के हकीकी से जा मिली। मैं इसकी बात न समझ सका, सारा की तरफ लपका और इसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ ढुलक गया, इसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था, इसकी नब्जें डूब चुकी थीं। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा, वो बदस्तूर दरख्शां नजर आया, जैसे वो कोई आसमानी मखलूक हो, जैसे कोई रोशन सितारा हो। मैंने इसे जगाने की कोशिश की, इसे पुकारा, अब वहाँ कुछ न था। मेरी सदाएं बेजवाब लौट आईं। इसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, सारा सारा, आह वो मर गई, फौत हो चुकी है। मैं सिसक पड़ा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बच्ची की आंखों में मौत की नींद भर गई है। मैं इसे ख्वाब समझ रहा था, मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, मेरे हलक में हिचकियां भर गईं। मैंने इसके चांद से चेहरे और रेशमी बालों की तरफ देखा, इसे बोसा दिया, यूं महसूस हुआ जैसे वो बार बार कह रही हो, अब्बा जान अफसोस आपने बहुत देर कर दी। बड़ी मुद्दत बाद होश में आए, अब आप दिन की रोशनी में चिराग जला रहे हैं। मैं बार बार पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने इब्राहिम को फौरन फ़ोन किया, जल्दी पहुँचो, सारा अल्लाह को प्यारी हो गई है। मेरे घर की दूसरी खवातीन ने मेरी बीवी के साथ मिलकर सारा को गुसल दिया। वो गुसल से फारिग हुई तो उन्होंने इसके पाकीज़ा जिस्म को सफ़ेद कफन में लपेट दिया। फिर मेरी बीवी ने मुझे आवाज़ दी, मैं आगे बढ़ा ताकि सारा को अलविदा कहूँ। करीब था कि गिर पड़ता, लेकिन अपने आप को संभाला, सारा की पेशानी पे बोसा दिया, इससे वादा किया कि अब मैं मौत तक दीन पर साबित कदम रहूँगा। फिर इसकी माँ की तरफ देखा, इसकी आंखों से अश्के रवां की नहर जारी थी। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा, सब्र करो, इंशाल्लाह हमारी सारा जन्नत में चली गई है, हम इसे वहाँ जा मिलेंगे। हौसला करो ताकि वो हमारे लिए सिफारिश कर सके। फिर मैंने अल्लाह ताला का ये फरमाने मुबारक पढ़ा, वल्लज़ीन आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहक़न बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इमरिम बिमा कसब रहीन। और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान के साथ इनकी पैरवी की, तो हम इनकी औलाद को जन्नत में इनसे मिला देंगे और इनके अमल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स इसके इवज जो के इसने कमाया गिरवी है। हमने इसकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर इसे कब्रिस्तान ले गए। मैं इसकी मैयत की तरफ देखता तो यूं महसूस होता जैसे सर चश्मे नूर की तरफ देख रहा हूँ, जिसने मेरी जिंदगी के अंदर, यानी आप ज़रा सा देखें कि इस वक्त उसके लिए ये चीज़ कितनी अहम है। क्या हमने इसकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर इसे कब्रिस्तान ले गए। मैं इसकी मैयत की तरफ देखता तो यूं महसूस होता जैसे सर चश्मे नूर की तरफ देख रहा हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी में कंदीलें रोशन कर दी। फिर हम कब्रिस्तान की सर्द और सुनसान फिजा में जा पहुँचे। मैं कब्र के किनारे खड़ा हो गया। इब्राहिम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी, अहमद सब्र करो। मैं कब्र में उतरा, मेरे दिलो दिमाग मुझे झंझोड़ने लगे, अहमद ये तेरा घर है, आज या कल, देर या सवेर, तू भी यहाँ कंधों पर सवार होकर आएगा। मैंने इसके लिए क्या तैयारी की है? इब्राहिम ने मुझे आवाज़ दी, बेटी को पकड़ो। मैंने इसे सीने से लगाया, इसे बोसा दिया, फिर दाएं पहलू पर कब्र में लिटा दिया और ये मुकद्दस अल्फाज पढ़े, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लती रसूलिल्लाह, हम तुझे अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर दफन कर रहे हैं। ये थी नेकी की सफ़ीर। यानी आप देखिए कि जाते जाते वो बच्ची नेकी की सफ़ीर बन गई। हमें भी कभी भी अपने इस तरह के रिश्ते जिसमें हम जज्बातियत के साथ किसी को नेकी की तरफ ला सकें, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, बिलीव मी। इसलिए कि ये मौके कई लोगों की ज़िंदगी में खैर और हिदायत का ज़रिया बन सकते हैं, लेकिन चूँकि हम अपने आप को ये समझ लेते हैं ना कि हमने बहुत देर तक जीना है, तो हम इन चीज़ों की केयर नहीं करते। बस रिश्ते ऐसे होते हैं और बस वक्त ऐसा होता है, कही हुई बात दिल पे आती है। आप सोचिए कि इस बच्ची ने तो मरना ही था, अगर ये उस रात आकर अपने बाप को ना रोकती और मर जाती तो हो सकता है बाप के दिल पे इतनी चोट ना ही पड़ती। पिछली कहानी में भी ये देखा था ना, जब बंदा हिदायत से दूर होता है ना, यानी अल्लाह से दूर हुआ, तो रिश्तों से भी दूर हो जाता है। फिर हर वो बंदा बुरा लगता है जो आपको कोई नसीहत करता है। जब आपका दिल पलटता है, जब आप अल्लाह की तरफ आते हैं, तो बाकी सारे रिश्तों की तरफ भी आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो अच्छा मुस्लिम होगा ना, वो अच्छा बेटा, बाप, भाई ज़रूर होगा। हमारे रिश्ते जो इंसानों के साथ बनते हैं ना, ये असल में हमारे ताल्लुक बिल्ला की तफसीर होते हैं। अल्लाह से ताल्लुक अच्छा होगा तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी चीज़ें अच्छी होंगी। और एक और चीज़ देखिए कि नबी सल्लम की ज़ुबान ने मुबारक से, सहाबा कहते हैं कि हमने 60 से ज़ायद बार ये किस्सा सुना है, किफ़ल का, स्टोरी ऑफ द किफ़ल। वो शख्स कह लीजिए आज के दौर में एक बदमाश था, बुरा काम, लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता, और एक औरत ने उससे 60 दिरहम के बदले में एक रात उसके साथ रहने का फैसला किया, मजबूर थी। लेकिन जब वो औरत उसको उस काम से रोक रही थी, उसने भी यही लफ्ज़ बोला था कि या किफल इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर जाओ। आप ज़रा से अपने ऊपर लें इत्तकिल्ला, यानी मैं आपसे कहूँ गाड़ी में बैठे हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, मैं कहती पुलिस से डर जाओ, साइन हो रहा है, सिग्नल है, कैमरे से डर जाओ, एकदम लोगों में राशातारी होता है ना। और लफ्ज़ इत्ता किल्ला कितना बड़ा लफ्ज़ है। हज़रत उमर फ़ारूक को किसी ने एक मौके पे कह दिया था, या उमर इत्ता किल्ला, उमर पे खशियत तारी होगी, अपना गाल जाके ज़मीन से चिपका दिया कि तुमने मुझे इतनी बड़ी हस्ती से डरा दिया। आज कोई कह अल्लाह से, ओ अल्लाह छोड़ो छोड़ो देखी जाएगी, कैजुअल लेते हैं। और यहाँ एक और चीज़ देखिए, बहुत लंबी तकरीर नहीं की बेटी ने, दो लफ्ज़। आपको भी मैं हमेशा एक ही नसीहत करूंगी, बच्चों को तरबियत दे रहे हैं आप या किसी भी शोहर को भी, इवन आधा जुमला बोलकर चले जाइए वहां से, बाकी उनका दिमाग खुद सोचे। हम जब पूरी डिक्शनरी शुरू होते हैं ना, सारे ही लफ्ज बदतमीजी के उसमें बोलते हैं, तो अगले को रिएक्शन शुरू होता है, वो कहता है अब इसने बोल लिया, अब मैं जरा इसको पहले निपट लूं। बिलीव मी, यानी आप लोगों की अन्ना को नहीं जगाएं, अन्ना सोया हुआ शेर होता है उसको सोने दें, आपको लोगों के जमीर को जगाना है। जमीर की आवाज़ पे खुद लोग बदलते हैं, आपके मेरे कहने पे नहीं बदलेंगे। ये जो कुरान पढ़ते हैं ना हम हर दिन आते हैं, तो ये असल में ये कुरान हमारे जमीर पे चोट लगाता है, कुरान खुद थोड़ी आके हमें कुछ कहता है। यानी आप कह लीजिए कि आप किसी क्लास में आकर अगर बैठते हैं ना, तो बुनियादी तौर पर आप अपने सोए हुए जमीर को जिंदा करते हैं। इसके बरक्स जब हम रिएक्शनरी होकर और गुस्से और स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो हम लोगों की अन्ना को बेदार कर देते हैं। अच्छा जी, आप ज्यादा नहीं है फिर? और देखिए, बच्चे से भी आप छुरी छुड़वाएं तो बच्चे को भी बुरा लगता है, चाहे छुरी उसके हाथ काट देती, लेकिन जिससे भी कुछ लेंगे उसको बुरा लगेगा। तो जब हम लोगों की बुरी आदतें क्यों ना लें, उनके शौक, उनके जौक, उनकी हैबिट्स जो उनको बड़ी प्यारी हैं, ये अब आपको कुरान ने बताया ना ये अच्छी नहीं है, आप उनके साथ जितनी रिस्पेक्ट से बात करें, आधा जुमला बोलकर जी बस मैंने कह दिया और आप समझदार हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद सोचेंगे, बाहर आ जाइए, कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी क्लूजन नहीं होगा, और फिर अगले को शर्मिंदा ना करें। और ये भी याद रखें, किसी पे तनकीद ऐसी थोड़ी सी करके फिर वहां से हट जाए, ये जो हमारा अंदाज है ना, सर पे सवार हो जाएंगे, बैठेंगे, उठें उठें उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर जाऊंगी, गलत है। गिव देम सम टाइम, स्पेस दीजिए। हर बंदे के अंदर अल्लाह ने ये जो एक अपने कुछ होने का एहसास डाला है ना, इस एहसास को सेटिस्फाइड करने दीजिए अगले को। वरना इस कहानी में देखा है कि वो बच्ची आई, दो चार जुमले बोलकर चली गई, और अगर बिरफर्ज बच्ची वहां बैठी रहती, दिल तो इसका खुला था लेकिन इसको उतना असर नहीं होना था अगर वहां बैठी रहती बच्ची। तो नसीहत करें, चल पड़े, खुदा हाफिज, अब हम जा रहे हैं। इसमें एक साइड का नुक्ता भी है, जब भी कोई दीन के नाम पे महफिल है, आपको कहीं को बुलाता है दर्स के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ भी बात करें, जितनी जल्दी वहां से उठ के आ सके आ जाइए। बाद में जब कीलो काल शुरू हो जाए, बातें शुरू हो जाए, खाने पीने दावतें, तासीर खत्म हो जाती है, फिर लोग उसी में खो जाते हैं। हमने बहुत अरसा लंदन में, जितनी देर में रही हूँ, जितने भी प्रोग्राम किए तकमीलात के और जो भी बड़े छोटे प्रोग्राम हमारी क्लास के होते थे, हम शुरू में ब्रंच रखते थे 11 बजे, मोस्टली क्लासेस सुबह की शुरू होती है ना, जब लिसनर्स को बुलाते हैं, तो 11 बजे से लिखा होता था फ्लायर पे 11 से लेके 11:15 वेलकम, 11:15 से 11:45 ब्रंच, वही जो भी इंतज़ाम, जो खिलाना पिलाना होता था तो वो रख देते थे, और उसके बाद रैप अप, पूरे 12 बजे प्रोग्राम शुरू, और 12 से फिर 1:30 2 जो भी करें, और एंड पे दुआ और जाइए। मैंने इसकी बड़ी तासीर देखी है। शुरू में फिर एक तो लोग जल्दी आने लग जाते थे कि चलो भाई, एक मोटिवेशन तो होता ही है ना, खा पी भी लिया, और सबसे बड़ी बात अपने अनसारुल आराम से बैठ जाते थे, वरना एंड वक्त तक खाने लग रहे हैं, देख रहे हैं, फिक्र, एक धड़का लगा होता है ये ना हो वो ना हो। तो हमेशा नसीहत करें, अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं, इंतहाई नागवार लगता है मुझे बाद में बैठना, मेरा रोज का मामूल है, सिर्फ ट्रिप्स जिसमें हम इस तरह से मजबूर कर दिए जाते हैं, मेहमान बनाए हुए हैं, लेकिन मैं उस महफिल को छोड़ देती हूँ। अगर आप कभी नोट करें, जिस जगह मैंने पब्लिक को दर्स दिया, मैं फिर वहां नहीं बैठती, फिर उन्होंने कहीं बिठाना है, बात करनी है, उनके एडमिन है, कोई कमरा है, वहां से उठ जाती हूँ, ताकि लोग अब जो लेके उठे ना, इसके बाद इधर उधर की बातों में ना पड़ जाए। तो बहरहाल, अल्लाह ताला आपको मुझे हिदायत पे रखे। हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।